ओम शांति। हम सबके बीच उपस्थित हैं आदरणीय उषा दीदी जी। आपने अपना 1980 में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित कर दिया और 1980 से लेकर 1992 तक आप मुंबई और हैदराबाद के अनेकानेक सेवा केंद्रों पर अपनी सेवाएं देती रहीं और उसके पश्चात से आज तक आप हेडक्वार्टर माउंट आबू में अपनी सेवाएं दे रही हैं और इस सेवा की यात्रा में अनेक कॉरपोरेट कंपनीज में आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी है और एक विशेष पहचान बनाई है ये ट्रेनिंग देकर अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। और आपके स्पष्ट वक्तव्य के कारण आप देश विदेश के अनेक कॉन्फ्रेंसेज में जाते रहते हैं और अपने विचार रखते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से अपने महान ग्रंथ रामायण व श्रीमद् भगवद गीता पर आपने एक स्पेशल रिसर्च की है और उसको कैसे अप्लाई किया जाए अपने जीवन में, या आप देश और विदेशों में जाकर भी इस पर अपने विचार रखते हैं। आपके अनेक लेक्चर्स टीवी चैनल्स पर आते रहते हैं, जैसे कि जी जागरण, संस्कार, आस्था, साधना चैनल आदि आदि, और सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप जो बुक है ये बुक भी आपके द्वारा ही लिखी गई है। ये सब खूबियां तो है ही, पर इसके साथ ही साथ मैं एक मुख्य खूबी आपको बताना चाहूंगी कि आदरणीय उषा दीदी जी की सभा में जो कितना भी बोझिल होकर आए वो हंसता मुस्कुराता हुआ भी, उड़ता हुआ पंछी बनकर ही वो इस सभा से बाहर जाता है। ये इनकी एक विशेष खूबी है। क्यों? क्योंकि उषा दीदी ये सिखा देती हैं कि जिंदगी में हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी में सदा हंसते रहो, ये जिंदगी की जरूरत है। और जियो कुछ इस अंदाज में कि तुमको देखकर सबको लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो ऐसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीवन जीने की कला वर्षों से सिखाती आ रही हैं अग्रणीय गुणमंडिता उषा दीदी जी। इसीलिए मैं उषा दीदी को बहुत बहुत दिल से वेलकम करती हूँ आज आर्ट एंड कल्चर की इस सभा में। हम सभी करतल ध्वनि से दिल से उषा दीदी का वेलकम करते हैं। और आज हम जानेंगे उषा दीदी से कि परमात्मा आखिर है कौन, जिन्हें हम जन्मों से याद करते आ रहे हैं। आदरणीय उषा दीदी,
ओम शांति। राजयोग के आज इस द्वितीय सत्र में राजयोग का मुख्य आधार पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय। अभी हम सभी ने बहुत सुंदर ये गीत सुना, एक खुदा बता तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तूने आखिर ये दुनिया क्यों बनाई, उसके पीछे तेरा मकसद क्या है। अगर ये जन्नत थी तो फिर दोजक कैसे बन गई, ऐसे अनेक सवाल और शायद आज मनुष्य के मन में भी ये सारे सवाल है ईश्वर के विषय में। सुबह के सत्र में आप सभी ने प्रथम आधार देखा राजयोग का, आत्मा की यथार्थता। जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक तो फिर भी एक ही मान्यता होती है कि हर धर्म वाले आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, चाहे किसी ने उसको शक्ति कहा, रूह कहा, आत्मा कहा, सोल कहा, परंतु है उस एक चैतन्य शक्ति की ओर इशारा। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां अनेक मतमतांतर हो जाते हैं। इतनी सारी मतें आज दुनिया के अंदर हो गई है कि शायद आज हर इंसान इतनी कंफ्यूज स्टेज में है कि आखिर भी वो परमात्मा कौन है। कुछ समय पहले मैं अमेरिका गई थी, वहां एक बहन मुझे कहने लगी कि मेरा बेटा 17 साल का है और वो मुझे सवाल पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब देना चाहती है और कहती है, बेटे हिंदू धर्म में ये सब भगवान है, समय प्रति समय अलग अलग रूप में अवतरित हुए, इसलिए ये सब भगवान है। वो बच्चा कहता है, अगर ये सब भगवान है तो इन सब का हेड कौन है? जैसे परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो इन सब भगवानों का हेड कौन है? वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती और इसीलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा मंदिर चलो, कोई विशेष ओकेजन होता है, त्योहार होता है, तो बच्चा मना कर देता है कि मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड, क्योंकि मुझे यही पता नहीं चलता है कि मैं अपने मन को कहां एकाग्र करूं और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर जाने के बाद आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम, मैं अपने समय को बर्बाद कर रहा हूं। वो माँ को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा मंदिर नहीं आता है, नास्तिक होता जा रहा है, और उसके लिए कहीं न कहीं वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझती है कि बचपन से हम ही अमेरिका आ गए, हमारे पास ही अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं, इसलिए शायद आज मैं अपने बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती हूं। ये उसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज जो भारत में रह रहे हैं, जिसके पास अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का ज्ञान है, अगर मैं आज आप सबसे यही सवाल करूं कि मान लो कि कल को आपका बेटा आपसे यही सवाल करे कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, क्रिश्चियन धर्म में गॉड, मुसलमानों में एक अल्लाह क्यों है, तो क्या आपके पास उसका जवाब है? क्योंकि आज का जनरेशन ऐसा है जिसको हर बात में एक लॉजिक चाहिए और इसीलिए जब तक उसको वो लॉजिक समझ में नहीं आता है तब तक उस बात को स्वीकार करना उसके लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए कम से कम आज की जनरेशन के लिए भी हमें ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर भी ईश्वर कौन है। एक बार हमने एक कार्टून देखा था जिसमें दिखाया था कि एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था वो कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था परमात्मा जैसा कुछ है ही नहीं, अगर सचमुच भगवान है तो प्रूव इट, सबूत दीजिए। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीजन लिया होगा, सत्य किसको कहे, क्योंकि सत्य एक होना चाहिए। 10 बातें हमारे सामने हो और हम कहे सभी सत्य है, असंभव। क्या प्रकृति परमेश्वर है, क्योंकि ये सारी मतें भी एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को परमात्मा कहे, ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, निराकार को कहे साकार को कहे या है ही नहीं कहे। और ये सारा कंफ्यूजन भी क्यों हो गया, इतना सारा ईश्वर को लेकर के ही सारा कंफ्यूजन क्यों हुआ, इसमें से सत्य क्या है, आप सबका विवेक क्या कहता है, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है। और जितना ही सत्य को समझने का प्रयत्न करते हैं उतना ही कहीं सत्य से दूर तो नहीं जा रहे हैं। क्या कहेंगे, आपका विवेक क्या कहता है, सत्य किसको कहे, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है, क्या कहेंगे। वो कहानी याद आती है मुझे कि एक बार 5 सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाके देखो हाथी कैसा है। थे ते नेत्रहीन गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया उस अनुसार हाथी का वर्णन कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंबे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, एक के हाथ में सुंड आई तो कहा सांप जैसा है, और एक के हाथ में कान आए तो कहा सूप जैसा है। आखिर सत्य क्या है, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको वो देख नहीं पा रहे थे। क्या कहेंगे, आपका विवेक क्या कहता है, आपका विवेक क्या कहता है, सत्य किसको कहे, हाँ? क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है, सत्य कुछ और है, हाँ? ये कहानी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देती हूं कि मान लो कि ये 5 सूरदासों को कहा जाए कि छठा अंधा दूर बैठा है, उनको जाकर के डिस्क्राइब करना है कि हाथी कैसा है। हर एक जाकर अपनी अपनी बात वो छठे सूरदास को कहते हैं, जिसने तो फील भी नहीं किया। अब ये सारे ओपिनियन सुनने के बाद उसका डिसीजन क्या होगा कि हाथी कैसा है, क्या कहेंगे, कितना कंफ्यूज्ड हो जाएगा, क्योंकि हर एक अलग अलग बात बता रहा है एक ही प्राणी के लिए, तो कितना कंफ्यूज्ड हो जाएगा। और अगर उसको जाकर के एक 7वें सूरदास को बताना है जो उसने समझा, ये 5 जनों ने जो बताया उसके हिसाब से, तो वो 7वें सूरदास को क्या बताएगा हाथी के विषय में, और वो 7वां सूरदास क्या समझेगा, कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आज ईश्वर के बारे में इतना सारा कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि हर मनुष्य इस संसार के अंदर ज्ञान के दिव्य चक्षु न होने कारण नेत्रहीन है। इसीलिए तो भजनों में गाते हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, हम अंधों की लाठी बनो प्रभु। यानी ये दो आंखें तो है, लेकिन वो तीसरा नेत्र दिव्य चक्षु न होने कारण आज हर मनुष्य नैनहीन अंधा है। और इसीलिए हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी भक्ति के आधार पर परमात्मा के स्वरूप का कोई गुण महसूस किया हो, कोई क्वालिटीज को जीवन में महसूस किया हो, अनुभव किया हो। उन्होंने अपने अनुभव से जो बात बताई, हो सकता है वो सही हो, लेकिन हर एक ने अपने अपने अनुभव से जो बातें बताना शुरू किया और वो आज के मनुष्य को जब बताते हैं ईश्वर का स्वरूप ये है, आज का मनुष्य भी अंधा है, नयनहीन है, वो क्या समझेगा। इतनी सारी मतें आ रही है उसके पास, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो कितना कंफ्यूज हो जाता है और उसने तो खुद ने अनुभव किया ही नहीं है। और उसको जाकर के अपने जनरेशन को या अपनी वंशज को बताना हो ईश्वर कौन है, उसके पास कोई अनुभव भी नहीं है और ईश्वर के बारे में बताना है तो वो क्या बताएगा। और इसलिए आज की जनरेशन जब सवाल पूछती है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता, निरुत्तर हो जाता है। और तब आज की जनरेशन यही कहती है, ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। इसलिए आज ईश्वर के बारे में इतना सारा कंफ्यूजन दुनिया के अंदर हो गया। आज हम आपको उन प्रश्नों का जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने जो कहा क्या हमें वो स्वीकार कर लेना है। नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतनी मतें हैं, ऑलरेडी आप इतने कंफ्यूज स्टेज में हैं कि हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं। परंतु आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो सत्य है नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। जैसे एक झवेरी होता है, उसके पास एक कसौटी रहती है जिस पर कसकर वो देखता है सोना कितना कैरेट का है, 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, उसके बाद उसकी कीमत का निर्णय देता है। ठीक इसी प्रकार आज हम भी आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो सत्य है नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। कब तक इस अंधेरे में भटकते रहेंगे निरुत्तर होकर के। और ये कसौटी है पांच बातें। पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य, जिसको सभी धर्म वालों ने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन, सो ही शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड। जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे सत्य। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो उसको कहेंगे सत्य। उसका कोई माता पिता नहीं होना चाहिए, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, उसका कोई रक्षक नहीं हो सकता है, वो सर्व का है। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, परमात्मा उसको कहेंगे जो सभी चक्र से ऊपर है, परे है, न जन्म है न मृत्यु है, अजन्मा है, जिसको काल नहीं खा सकता है, अकाल मूरत है, जो देह और देह के संबंधों के चक्र से भी ऊपर है, जो कर्म और कर्म के फल के चक्र से भी ऊपर है, जो पाप और पुण्य से भी परे है, जो सुख और दुख से भी ऊपर है, जो इन सभी चक्र से ऊपर है, उसको कहेंगे परमेश्वर। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्यंत का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी जिसको कहते हैं, त्रिलोकी नाथ जिसको कहते हैं, त्रिनेत्री जिसको कहते हैं, जो ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला है, और त्रिमूर्ति जिसको कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, त्रिमूर्ति कहा उसको कहेंगे परमेश्वर। ये तीन की महिमा भी उसी के साथ जाती है। और पांचवा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्व शक्तिमान हो, जिसके लिए मां शारदा ने कहा, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर परमेश्वर की महिमा लिखे, तो भी अपरंपार जिसकी महिमा है उसको कहेंगे परमेश्वर। ये पांच बातें हैं कसौटी। अब इस पर एक एक मत को कसकर देखो, सत्य है नहीं तो सत्य को प्राप्त करें। पहली बात, जब हम कहते हैं नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है, क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? आपका विवेक क्या कहता है, स्वीकार करेंगे? नहीं। क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है, जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? अब सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है। तो प्रकृति को परमेश्वर मानना यह अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो हमने मान लिया। सत्य ये है, प्रकृति परमेश्वर की रचना है, उस चित्रकार का चित्र है। ठीक है, स्पष्ट हो गया या कोई प्रश्न है? आगे बढ़े। दूसरी बात, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर हम आत्माएं ईश्वर के मंदिर में या देवी देवताओं के मंदिर में जाकर ये क्यों गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे? अब सत्य क्या है? हम ही परमात्मा है या हम उस माता पिता की संतान है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? उस माता पिता की संतान है कहना सत्य है। कई बार कई लोग क्या कहते हैं कि नहीं, जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो मैंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिया। इस संसार में मनुष्य अपनी मेहनत से कोई भी पोस्ट पोजीशन को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? बन सकता है। पिता जैसा बन सकता है, पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभाल सकता है, पिता जैसा बनकर छोटे भाई बहनों को बड़ा कर सकता है, परंतु जब वो अपने पिता के सामने जाता है तब बच्चा ही रहेगा। जब प्रॉपर्टी के झगड़े की बात आती है तब छोटे भाई बहने भी यही कहते हैं, आप हमारे पिता समान हो, लेकिन पिता बनने की कोशिश मत करना। कहते कि नहीं कहते? ठीक इसी तरह मनुष्य संसार में जैसा कर्म करता है वैसा टाइटल अवश्य मिल जाता है। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे ये पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे ये महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे ये धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे ये देवात्मा है। देवात्माएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है, महात्माएं अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, पापात्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन। और ये सब भी आत्माएं हैं, परमात्मा कोई नहीं है। पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान आत्मा महान परमात्मा नहीं कहा गया, धर्म आत्मा धर्म परमात्मा भी नहीं कहा गया, देव आत्मा देव परमात्मा भी नहीं कहा गया। देव आत्माएं भी भारत में कितनी हो गई? 33 करोड़ देवी देवताएं हो गए। वो सब भी देव आत्माएं हैं, देव परमात्मा किसी को नहीं कहा, परमात्मा एक है। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, वैसे हम भी परमात्मा से निकले हैं। एक बड़ा सा प्रकाश है, उसके टुकड़े टुकड़े होकर के अंश होकर के हम नीचे आए और अंत में जाकर के उसमें लीन हो जाना है, समा जाना है। ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वो मैटर है। मैटर मैटर में समा सकता है, तत्व तत्व में समा सकता है, लेकिन न आत्मा तत्व है न परमात्मा तत्व है। आत्मा भी एक शक्ति है, परमात्मा भी शक्ति है। शक्ति के लिए हमेशा यही कहा गया है कि शक्ति को न क्रिएट किया जा सकता है, न डिवाइड किया जा सकता है, न खत्म हो सकता है। उसका अस्तित्व सदा रहता है। इसलिए आत्मा को हमेशा यही कहते, आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। अजर जर्जर भी नहीं होती है, अमर मरती भी नहीं है, और अविनाशी जिसके अस्तित्व का विनाश नहीं हो सकता है, जो सदा शाश्वत है, जिसका अस्तित्व सदा के लिए है ही है, इटर्नल। तो प्रकृति के इन तत्वों के साथ उसकी कंपैरिजन कैसे हो सकती है? दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अपने हैं, तत्व तत्व में मिल सकता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न उसके टुकड़े होते हैं, न वो जाकर के लीन होती है। इसीलिए सत्य क्या है? क्या आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है। तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान था। इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण हमने कह दिया। सत्य ये है, आत्मा परमात्मा की संतान है। ठीक है, दूसरी बात, आत्मा परमात्मा का अंश है कहना सत्य है, टुकड़ा है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा का वंश है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? अंश कहेंगे या वंश कहेंगे? वंश कहते हैं, अंश नहीं है, हम उसके टुकड़े नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरी बात, जब हम कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, तो ब्रह्म क्या चीज है? आप सभी ने आज सुबह के सत्र में देखा होगा कि ब्रह्म महातत्व है। ये पांच तत्वों की दुनिया से पार छठा तत्व, अखंड ज्योति का महातत्व, जिसको नाम दिया गया ब्रह्म महातत्व। अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दिया गया है। गीता में जिसको परम धाम कहा, किसी ने उसको मोक्ष धाम कहा, किसी ने उसको निर्वाण कहा, किसी ने उसको सातवां आसमान कहा। पांच तत्वों की दुनिया से पार छठा तत्व, सातवां आसमान जिसको कहा, जहां आत्माएं भी निवास करती है, परमात्मा भी निवास करते हैं। किसी ने उसको रूहानी दुनिया कहा, जहां सब आत्माएं रूह निवास करती है। किसी ने उसको सचखंड कहा, किसी ने उसको हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड कहा। भिन्न भिन्न नाम दिए गए। अब सत्य क्या है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या जो भजनों में लोगों ने गाया पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म में निवास करने वाला परमेश्वर। अज्ञानता के कारण हम दो दो बातें बोलते रहे। अब सत्य क्या है वो हमें अपने विवेक से सोचना है, कि ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है। तो ब्रह्म ही ईश्वर है कहना अज्ञान था। इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस अगेन। चौथी बात, जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? क्या सब में ईश्वर है? कूड़ा कचरा गंध गटर सब में ईश्वर है? आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है? ऊंचे से ऊंची हस्ती को कहां हमने कह दिया, है ना? अरे कोई हमें अगर ये भी कह देता कि ये तो जानवर जैसा है, तो भी हमें एक गाली महसूस होती है, हमको जानवर जैसा कहा। जब ईश्वर को हम कहते हैं वो जानवर में भी है, कूड़े कचरे में है, तो क्या ये परमात्मा को गाली देना नहीं हुआ? ऊंचे से ऊंची हस्ती को गाली देना नहीं हुआ? तब मनुष्य कहते हैं नहीं, मन परमात्मा सभी चैतन्य प्राणियों में है, मनुष्य आत्मा में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अब सोचने की बात है कि हर इंसान में अगर आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है, और एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? हा? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस समय उसमें बैठा परमात्मा क्या कर रहा था? क्या परमात्मा के पास इतनी शक्ति नहीं जो एक आत्मा को बुरे कर्म से रोक सके? आज घर में अगर बच्चे हो, माँ बाप सामने बैठे हो और बच्चे अगर आपस में लड़ने लगे तो देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना। अगर एक शारीरिक माता पिता भी बच्चों को आपस में लड़ता नहीं देख सकता है तो परमात्मा जो दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर हमारे बाजू में बैठा है और वो कुछ कहे ही नहीं तो उसका बैठने का कोई मतलब बैठा क्यों है? फिर जब उसकी महिमा गाते हैं तो महिमा में तो यही गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जिसका धाम भी इतना ऊंचा है। नीचे है ये तो कहा ही नहीं। आज कोई हमें कोई बात बताता है या पूछता है और हमें मालूम नहीं होता है तो क्या कहते हैं? अरे ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते? कहते ना, कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने, ऊपर वाला जाने। फिर ये ऊपर वाला कौन है? अगर वो सर्व में व्यापक है तो ऊपर वाला कौन है? किसकी तरफ इशारा किया हमने कि ऊपर वाला जाने? गीता के महावाक्य में हमने देखा यदा यदा ही धर्मस्य, चौथे अध्याय में जब भगवान वाच है कि जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब मैं इस संसार में आता हूं, अवतरित होता हूं। अगर वो अधर्म के समय पर इस संसार में आते हैं तो इसका मतलब नहीं हुआ तभी तो आएंगे। अगर वो यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? अगर वो यही है तो फिर कौन आएगा? कई सवाल है। या तो गीता के ये महावाक्य गलत है, वो तो हो नहीं सकता भगवान उवाच कि मैं अधर्म के समय पर आता हूं। आज प्रकृति के अंदर भी देखो, प्रकृति के पास भी एक गुण है कि एक अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा, लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा, संग का रंग। आज मनुष्य भी थोड़े दिन किसके संग में रहते तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी को भी संग का रंग लग जाता है। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक शिकारी दो तोता पकड़ कर ले आया, बाजार में बेचने बैठा। एक तोते को एक महात्मा अपने आश्रम पर ले गए, दूसरे तोते को एक बदमाश अपने अड्डे पर ले गया। थोड़े दिन के अंदर ही देखा गया कि जो तोता महात्मा के आश्रम पर गया था वो राम राम बोल रहा था और जो तोता बदमाश के अड्डे पर गया था वो सुबह सुबह गालियां बोल रहा था। अगर पशु पक्षी को भी संग का रंग लग जाता है, परमात्मा हमारे बाजू में बैठा है और गुणों में अनंत हो और उसके कोई गुणों का संग का रंग हमें न लगे, ऐसा हो सकता है? लेकिन तब फिर मनुष्य के मन में यही प्रश्न आता है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्र में ही लिखी है, शास्त्र गलत है? शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन शायद हमने शास्त्र के भाव को समझा नहीं है। शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र कैसे लिखे? तो कहा जाता कि वो जब समाधि अवस्था में बैठते थे, उस वक्त समाधि में जब जाते थे और उन्हें दिव्य अनुभूतियां होती थी, जिन दिव्य अनुभूतियों के आधार से उन्होंने ये शास्त्र का निर्माण किया। और इसी तरह जब वो समाधि में बैठते थे और उस दिव्य अनुभूतियों में जब समय के अंतराल से वो देखते थे तो उस समय देखा था कि कलयुग जब आएगा तो कितना घोर पाप कर्म का युग होगा। मनुष्य आत्माओं को ये पाप कर्म से बचाएं कैसे? तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिखी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है। ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक भय रहे कि भगवान मुझे देख रहा है तो वो पाप कर्म न करे। जिस तरह एक छोटे बच्चे को, जब वो छोटा बच्चा घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस समय माँ को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर ना निकल जाए, तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी, देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। अब कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन बच्चे में एक भय बिठाया ताकि बच्चा घर के अंदर रहे, सुरक्षित रहे। और इसलिए बच्चा जब घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता भी है, जैसे ही कुत्ते को देखता है तो क्या करता है, क्या करता है, वापस आ जाता है और खुश होता है, मैं सुरक्षित हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा, हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती, कुत्ता उठा के ले जाने वाला थोड़ी है, और हंसते हुए निकल जाता है। और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में ले आएगा, कहेगा लो मैं ही लेके आया है ना। भावार्थ ये कि जिस बात को उसने पहले सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार जब ऋषि मुनियों ने ये बात कही और कली काल आरंभ हुआ, मनुष्य भी पाप करने से डरता था, कोई अगर उसको प्रेरित भी करता था पाप करने के लिए तो क्या कह देता था, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था। लेकिन आज जब विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और उस समय कोई उसको याद भी दिलाता है अरे क्यों इतना पाप करता है, तो क्या कहता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, वही डायलॉग रिपीट करता है, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, कहता है ना। पहले क्या कहता था, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है। और आज क्या कहता है, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। भावार्थ ये कि जिस बात को उसने सत्य मान लिया था और सुरक्षित रहा था पाप कर्म करने से, आज उस बात को भी वो ठुकरा देता है। और कोई अगर उसको कहता भी है कि भगवान तुझे देख रहा है तो क्या कहता है, भगवान देखता क्यों है, छुड़ाए ना, वो तो सर्वशक्तिमान है, छुड़ाए ना। मना उस समय भी ईश्वर पर दोष डाल देता है। कई बार कई लोग हमसे बहस करते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। हम उनको एक ही बात पूछते हैं, आप मानते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तो कहते हैं हाँ हम मानते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान है। तो हम उनको यही कहते हैं, इसका मतलब आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा, जो ये चीज मानता हो कि कण कण में भगवान है, उससे कभी कोई पाप कर्म हो सकता है, कोई गलत काम हो सकता है। उस समय फिर चुप हो जाते हैं कि ऐसी बात नहीं है, जब ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है, जब आपको उस बात को स्वीकार नहीं करना है, पाप करते ही जाना है, और फिर ये एडवोकेट करो कि भगवान सब जगह है, मतलब क्या आया? या तो आप स्वीकार करो और फिर एडवोकेट करो कि हाँ भगवान सर्वव्यापी है, वो तो करना नहीं है, तो फिर फालतू बहस किस बात की? सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं, कि ये माइक में भी परमात्मा इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा इसलिए मैं बैठ के उसकी पूजा करूं, ये कुर्सी में परमात्मा इसलिए मैं बैठ के उसकी पूजा करूं, ये अंधश्रद्धा हो जाती है। लेकिन अगर इस भावना को लेकर के जीवन में चलेंगे तो कभी कोई गलत काम नहीं होगा, जो बात को हम भी स्वीकार करते हैं। क्या आज अगर हम कहीं बाहर अकेले जा रहे हो और कोई हमें पूछे बहन जी आप अकेले जा रहे हो, तो हम कहेंगे नहीं भगवान मेरे साथ है। इस भावना को लेकर चलने की बात है, कोई बैठकर एक एक चीज की पूजा करने की बात नहीं है, ये अंधश्रद्धा हो जाती है। उस भावना को लेकर चलो, जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं होगा, ये शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए कहा सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। पांचवी बात, जब हम कहते हैं निराकार है, ना नाम है ना रूप है ना आकार है, इस संसार में नाम रूप आकार बिना कोई चीज है? हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर एक चित्रकार को चक्रवात तूफान दिखाना है तो दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है, कि चित्र को देखकर कहेंगे चक्रवात तूफान है, बड़ी तेज हवा है। और शांत प्रकृति दिखाना है तो वो भी दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है, कि जैसे एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखाई दे रहा है। जो हवा का आकार नहीं है, उसको भी एक चित्रकार ने अपने चित्र के अंदर ढाल दिया, तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? निराकार ये प्रयोग भी विशेषण के रूप में किया गया है, जैसे परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। निर्गुण का भी अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो जिसमें कोई गुण नहीं, लेकिन निर्गुण का भाव है जिसके गुण मनुष्य सदृश नहीं है, उस अर्थ में कहा निर्गुण है। इसी तरह निराकार का मतलब जिसकी आकृति मनुष्य सदृश नहीं है, उस अर्थ में कहा निराकार, लेकिन उसका अपना आकार तो है, वो आकार कौन सा है? तो जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है, कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति पुंज है तो उसके पिता का स्वरूप भी ज्योति पुंज है, परम प्रकाश है, दिव्य तेजोमय है, जिसकी आकृति मनुष्य जैसी नहीं है, जिसकी पूजा भारतवासियों ने ज्योतिर्लिंगम के रूप में की है। ज्योतिर्लिंगम जो ज्योति की आकृति है, लिंग माना आकृति, जैसे ग्रामर के अंदर शब्दों के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहा जाता है, स्त्री की आकृति पुरुष की आकृति, इसी तरह ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति है। ज्योति की पूजा मनुष्य कैसे करे? इसलिए एक आकृति दे दी जिस पर अपनी भावनाओं को अर्पित कर सकता है और जिसके पूजा करता है। इसीलिए उसको नाम दिया सदाशिव। सदाशिव माना जो सदा कल्याण करने वाला है, गुणवाचक नाम है। मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, कर्तव्यवाचक नहीं है। परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। सदाशिव यानी जो सदा कल्याण करने वाला है। इसीलिए भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान हो गए। और जितने भी मंदिरों के नाम है वो भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक है। मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं होते हैं। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी। किसी का नाम होगा हसमुख बहन, लेकिन कभी हंसते ही नहीं होंगे। किसी का नाम होगा अमीर चंद, लेकिन होगा फकीर चंद। आजकल तो लोगों ने देवी देवताओं के नाम भी अपने ऊपर लगा दिए, राम भाई, कृष्णा भाई, शंकर भाई, और उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो डबल नाम लगा दिए, राधेश्याम, सीताराम, गौरी शंकर, डबल डबल नाम, डबल नाम चाहिए। और साउथ में चले जाओ तो तीन तीन नाम मिलेंगे, शिवा, रामा, कृष्णा। शिवा भी, रामा भी, कृष्णा भी, और क्वालिटीज एक की भी नहीं होंगी। परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, जो अमर आत्माओं का नाथ है। साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है। ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत से बाहर जाओ पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। तो परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में होती है। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाओ श्री राम, श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा अधिक मिलेगी। तो कलकत्ता चले जाओ, काली पूजा, दुर्गा पूजा मिलेगी। गुजरात, महाराष्ट्र में जाओ तो गणेश पूजा मिलेगी। तो तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय की पूजा मिलेगी, मुरुगन की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में। इसलिए दिखाते हैं कि भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। इसीलिए उसको कहा देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की, देवी देवताओं ने भी जिसकी पूजा की, है ना। रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की। अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या जरूरत पड़ी। स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं, रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से पाई थी, शिव भक्त था। इसीलिए तो उसको भोलानाथ कहते हैं, कि वो कोई डिफरेंस नहीं रखते हैं कि भाई रावण ने पूजा की, तपस्या की, तो उसको शक्ति नहीं देना है। नहीं, जिसने भी उसको याद किया इतना भोलानाथ है, जिसने भी प्यार से उसको याद किया उसने शक्ति प्रदान कर दी। और इसलिए स्वयं श्री राम भी जानते थे उसके पास महादेव की शक्ति है, और महादेव की शक्ति के साथ मुकाबला करना हो तो मैं अपनी शक्ति से नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए लंका जाने से पूर्व उसने महादेव की पूजा करके उस शक्ति को प्राप्त की, तब रावण के ऊपर विजयी हो सके। इसी तरह कुरुक्षेत्र के मैदान में चले जाओ, जहां दिखाते हैं स्थानेश्वर का मंदिर है, थानेसर जिसको कहते हैं, जिसका यादगार है कि महाभारत के युद्ध के पहले स्वयं श्री कृष्ण ने भी जिसकी पूजा की, पांडवों से भी कराई। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्हें पूजा करने की क्या जरूरत थी, पांडवों से अपनी पूजा क्यों नहीं कराई, महादेव की पूजा क्यों कराई? क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे, अधर्म पर विजय प्राप्त कराना हो तो बिना महादेव की शक्ति से विजय नहीं प्राप्त करा सकते। जिन देवियों की हम पूजा करते, ये देवियां कौन है? तो उसको कहते हैं असुर संहारनी शिव शक्तियां। जिसने असुरों का संहार किया, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जहां दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप भी अलग है, एक है ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का कार्य भी अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ, शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है, एक विनाशकारी एक कल्याणकारी। नाम अलग है, स्वरूप अलग है, आइडेंटिटी अलग अलग है, ऑक्यूपेशन अलग अलग है, फिर एक कैसे हो सकता है? जब भी कोई मंत्र देता ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है, किसी ने ओम नमः शंकराय कहा? अगर एक है तो देना चाहिए। भारत में हम शिवरात्रि शिव जयंती मनाते हैं, उसको शंकर रात्रि या शंकर जयंती कहा? नहीं। अगर एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते हैं? शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया है। किसका ध्यान कर रहा है? उनसे श्रेष्ठ कौन था? कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने कितने सालों तक की ध्यान किया। जो भी कैलाश मानसरोवर होकर के आते हैं वो यही कहते हैं कि कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा ज्योतिर्लिंगम, पूरा पर्वत ही ज्योतिर्लिंगम आकार का है। जहां बैठ शंकर ने भी इतने साल ध्यान किया। अगर शंकर भगवान थे, महादेव थे, तो उन्हें तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि उनको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंख खोलते महाविनाश हो जाना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके। इसलिए इतना सालों तक तपस्या करते हुए उस शक्ति को प्राप्त किया, तब जाकर के वो कार्य कर सके। आज भी जो अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, उससे अगर पूछा जाए तो वो यही कहते हैं अमरनाथ की यात्रा का महत्व क्या है, तो वहां के पंडित लोग बताते हैं कि अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की अमर कथा सुनाई थी, जिसके साक्षी वो दो कबूतर दिखाते। अब शंकर ने पार्वती जी को कौन से अमरनाथ की अमर कथा सुनाई? इसका मतलब अमरनाथ और शंकर एक है या अलग है? क्या कहेंगे? अलग है। अगर उसने भी उसकी कथा सुनाई तो शिव कोई और है। लेकिन एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक भिखारी था, रोज भगवान के द्वार पर जाकर भीख मांगता था। भगवान का भी राजा का भी नियम था, राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगता था। राजा का भी नियम था कि मेरे द्वार पर जो आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ देना जरूर है। एक दिन भिखारी ने सोचा कि ये राजा लाता कहां से है, उस स्रोत को अगर मैं भी जान लूं तो मुझे भी भीख मांगनी ना पड़े। तो उसने सोचा राजा जरूर सुबह सुबह स्रोत से प्राप्त करता होगा, फिर सारा दिन लोगों को बांटता होगा, आज मुझे जाकर के देखना है। वो सुबह सुबह 6 बजे में पहुंच गया। द्वारपाल से पूछा, द्वारपाल मुझे ये बताओ इस वक्त राजा कहाँ होंगे और क्या करते होंगे। द्वारपाल ने कहा, राजा तो मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं। भिखारी ने सोचा जरूर वहां कोई स्रोत होगा जो प्राप्त करते हैं और फिर सारा दिन लोगों को बांटते हैं। उसने पूछा मैं जा सकता हूं? कहा क्यों नहीं जा सकते, लेकिन पीछे बैठना, आगे नहीं जाना। कहा मैं पीछे ही बैठूंगा। पीछे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में राजा ने प्रार्थना की भगवान से कि हे प्रभु, मेरी झोली सदा भरतू रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ही भिखारी ने ये बात सुनी, उठ के बाहर आ गया। द्वारपाल ने पूछा, बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात है? कह रहे आज पता चला ये राजा भी भिखारी है, वो भगवान से भीख मांगता है कि मेरी झोली इतनी भरतू रखना मैं अनेकों की झोली भर सकूं, मैं भी भगवान से ना मांगू। चलते चलते भिखारी के मन के विचार चलने लगे कि राजा पूजा कर रहे थे हनुमान जी की, इसका मतलब हनुमान जी ने राजा को दिया, राजा ने हमें दिया। फिर विचार आया कि हनुमान जी की झोली किसने भरी? तो कहा वो तो श्री राम भक्त था, इसका मतलब श्री राम ने हनुमान जी की झोली भरी, हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी झोली भरी। फिर विचार आया श्री राम की झोली किसने भरी? तो कहा उसने तो भोलेनाथ को याद किया था। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि इसका मतलब भोलेनाथ के बहुत सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा श्री राम को मिला होगा, श्री राम के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा हनुमान जी को मिला होगा, हनुमान जी के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा राजा को मिला होगा, राजा को भी तो इतने सारे को देना पड़ता है, एक हिस्सा मेरे पास आया। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि ये वाया वाया में कम हो रहा है ना, क्यों ना मैं डायरेक्ट कनेक्शन भोलेनाथ के साथ ही करूं, कहीं हम भी वाया वाया में तो नहीं अटक गए हैं। क्या करना चाहिए फिर, क्या करना चाहिए? अरे डायरेक्ट कनेक्शन करो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? भोलेनाथ है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अनगिनत दे देते हैं। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर दूसरे धर्म में जाएं, इस्लाम धर्म में। कहा जाता है कि इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा नहीं होती है, परंतु मक्का जब जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है। और ये पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है। कहानी ये है कि पहले मक्का के अंदर 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, हर एक के अपने अपने इष्ट होते थे। परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। वो लोग बड़े नाराज हो गए कि क्या ये हमारे अल्लाह नहीं है? उसने कहा अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, मोहम्मद पैगंबर साहब को मक्का से मदीना भेज दिया गया। लेकिन फिर भी ये विचारधारा चलती रही। धीरे धीरे लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए, जब काफी मात्रा में इकट्ठे हो गए तब पुनः मक्का आए। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ। उस समय कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और ऊपर से ये पत्थर गिरा था। और इसलिए तब से लेकर के उसकी स्थापना की गई मक्का में, वो 360 देवी देवताओं की मूर्तियां सब नष्ट कर दी गई। और उसके बाद यही मान्यता रही अल्लाह एक है। तभी ये मानते हैं कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो जीवन सफल नहीं हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में जाने के नियम भी बहुत कड़े होते हैं, हर कोई हज में नहीं जा सकता है। लेकिन वहां जाने के बाद वो क्या करते हैं? अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं, 7 बार परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और किसी मस्जिद में भी नहीं होती है। शैतान को पत्थर मारते हैं, ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार, परमेश्वर को कहा गया है, हे परवरदिगार नूरे लाही, मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही, इसलिए वो कहते अल्लाह नूर है। नूर का मतलब प्रकाश, तेज। ज्योति का मतलब प्रकाश, तेज। बात एक ही है या अलग है? जिसको भारतवासियों ने ज्योतिर्लिंगम कहा, उन्होंने नूर कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म के अंदर तो कहा जाता है, क्या यहूदियों में सर्वप्रथम जब मोसेस माउंटेन पर गए थे, जहां उनको 10 कमांडमेंट्स दो पत्थरों पर मिले थे, उस वक्त उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ था, जिस प्रकाश को देख करके मोसेस ने कहा यहोवा द सुप्रीम लाइट। जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसलिए जब उनको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे, उस वक्त अपनी अंतिम प्रार्थना में भी उसने भगवान से यही कहा कि हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। गॉड इज लाइट। आज भी अगर वेटिकन सिटी चले जाओ, जहां पोप की गद्दी है, उस चर्च के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी। अखंड ज्योति स्वरूप, निराकार परम प्रकाश स्वरूप की ही प्रतिमा मिलेगी, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, इस्लाम में नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने तो बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई, जितना स्पष्ट और किसी ने नहीं गाया है इस संसार में। इतनी सुंदर रीति से महिमा गाई है, उसकी महिमा की गई है, और इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 तीर्थंकर सभी ध्यान मुद्रा में दिखाए हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? महावीर स्वामी को भी ध्यान मुद्रा में दिखाया, महावीर ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। आज भी जब जैनी लोग दिवाली के दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं, उस वक्त अपनी प्रार्थना में यही गाते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया, वो गति हमें भी प्राप्त हो। वो शिव धाम कौन सा था? और उस निराकार को उन्होंने कहा सिद्ध शिलापति, जो सर्वश्रेष्ठ है। और उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त होने के लिए 3 बातें बताते हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र। चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, ज्ञान का 3रा नेत्र जरूरी है, और दर्शन, जीवन एक ऐसा दर्शन बन जाए, तब उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकते हैं। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, उनको भी ध्यान मुद्रा में दिखा। किसका ध्यान कर रहे हैं? आज भी जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, और उसको कहते करनी का पवित्र पत्थर, जिसको नाम दिया है चिंकुन सेकी। चिंकुन सेकी अर्थात जो शांति का दाता है, इसलिए उसके सामने बैठ के वो मेडिटेशन करते हैं और अपने मन को शांति का अनुभव में ले चलते हैं। चिंकुन सेकी। और आगे जाए, पारसी धर्म के अंदर कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर आए थे, और आज भी उनकी अग्यारी को कहा जाता है फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है, उसी को परमेश्वर कहा गया। तो सर्व धर्म मान्य, जिसको सभी धर्म वालों ने स्वीकार किया, वो सत्य क्या है? किसी ने गॉड कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने प्रभु कहा, ईश्वर कहा, मालिक कहा। शिरडी चले जाओ, साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, उसने यही कहा सबका मालिक एक है। तो सर्व धर्म मान्य एक ही है, वही सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई नहीं है, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है। इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है, जिसका कोई गुरु नहीं है, जिसका कोई शिक्षक नहीं है, जिसका कोई रक्षक नहीं है, सर्वोच्च शक्ति। वही सर्वोपरि है, जो सभी चक्र से ऊपर है, न जन्म है न मृत्यु है। गीता के अंदर चौथे अध्याय में जब कहा कि मैं अजन्मा हूं, मैं पुनर्जन्म रहित हूं, अव्यक्त स्वरूप हूं, मैं किसी माता के गर्भ से नहीं आता हूं इस संसार में, मैं अवतरित होता हूं, काल मुझे नहीं खा सकता है, और इसीलिए मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, अव्यक्त। मुझे न देह है, कोई व्यक्त स्वरूप है, न कोई मेरे रिश्तेदार है, न कर्म है, न कर्म का फल है, अकर्ता भोक्ता है। पाप और पुण्य के चक्र से जो परे है, सुख और दुख से भी जो परे है, जो सभी चक्र से ऊपर है, और वही सर्वज्ञ है, ज्ञाता है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, जिसके पास तीनों कालों का ज्ञान है, और सत्य ज्ञान होने कारण ही उसको सत्यम कहा गया। उस तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, त्रिनेत्री है, जिससे कल्याण का दर्शन कर सके। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होना चाहिए, अर्थात जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण ही उसको सुंदरम कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। गॉड फादर, जीओडी गॉड यानी फादर ऑफ जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो ये परमात्मा के जो महिमा है, और सर्व गुणों में अनंत है, सर्व शक्तिमान है। एक बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है? अनंत। और इसीलिए सर्व शक्तिमान है। ज्योमेट्री के अंदर बिंदु की डेफिनेशन है इन्फिनेट। साइंस के अंदर एटम सबसे सूक्ष्म है, और इसीलिए गीता में भी कहा मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म। तो ये है परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी का परिचय लेते हैं ना, तो पांच बातें पूछी जाती है, आपका नाम क्या है, फिर आइडेंटिटी चाहिए, फोटो चाहिए, वही है कि दूसरा है, तीसरा क्वालिफिकेशन चाहिए, चौथा एड्रेस चाहिए, पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन चाहिए, ये पांच बातों में सारा परिचय आ जाता है। आज परमात्मा के परिचय में भी हमने ये पांचों बातों को देखा, ये जिसका नाम है सदा शिव, सदा कल्याण करने वाला सदा शिव, यहोवा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, सिद्ध शिलापति, वाहे गुरु, मालिक, जो भी कहो, उसका स्वरूप है अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रकाश, नूर, लाइट, जिसके क्वालिफिकेशन है पांच बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान, और उसका एड्रेस है पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, रूहानी दुनिया, सचखंड, परम धाम, मोक्ष धाम, उस दुनिया में निवास करने वाला, और उसका कर्तव्य है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी हो जाती है, अधर्म चारों ओर फैल जाता है, तो अधर्म का नाश कराना और सत धर्म की स्थापना कराना शंकर द्वारा अधर्म का नाश और ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की सर्जना का कार्य करण करावनहार परमात्मा है, खुद नहीं करता है, कराता है, इसीलिए उसको करण करावनहार कहा। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। अभी तो अगर आपके बच्चे या पोते आपसे पूछे कि परमात्मा कौन या इन सब भगवानों का हेड कौन, तो जवाब दे सकते नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। तो अभी जो शिकायत थी कि हमारा मन ईश्वर में नहीं लगता है, तो अब लगेगा या नहीं लगेगा? अब तक नहीं लगता था, उसका कारण ही ये था, कंफ्यूजन था, किस में लगाए, कहां लगाए। अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया तो अब लगाना सहज हो गया। अब दो मिनट हम सभी परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे।